आप सबका स्वागत है। पांचवा दिन है आज रिट्रीट का। आप सब कैसे हैं? आपको सुनाई दे रहा होगा। कुछ कोट्स हैं जो सारा बहन बोल रही है। एक एवियो है इज़राइल मोर, जो कहते हैं कि संसार में श्रेष्ठतम भिखारी के लिए कोई पदक नहीं है, कोई भी भिखारियों का उत्सव नहीं मनाता। उनका नाम है एवर। कल जो हमने बात करी थी उसी के ऊपर आधारित ये उद्धरण है। एक जॉन मिल्टन है, उन्होंने लिखा, उन्होंने मन के बारे में लिखा है कि मन अपनी जगह है और अपने आप में नरक का स्वर्ग और स्वर्ग का नरक भी बना सकता है। हो सकता है बाहर सब कुछ बहुत अच्छा हो सिवाय एक चीज के, मगर वही बात है कि अगर हम झूठे व्यक्तित्व में हैं तो नहीं पहचान पाते हैं। कल हमने अपने मन की अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनके बारे में जाना कि हम भिखारी हैं या हम शिकार बन गए हैं। जो पौधे का एक उदाहरण दिया था प्रशांत भाई ने कि आप उसको उस पौधे का बहुत ध्यान रखते हैं और कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता तो वो आपको बुरा लगता है। इसी तरह से ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि कोई आप उस प्लांट की बात करता है, कोई नहीं करता है। और ये एक उदाहरण था आपको समझाने के लिए कि मैं फेल होने पे नीचे की तरफ को गिरता चला जाता हूँ या उठ के वापस प्रयास करता हूँ ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पर पारस का इस्तेमाल करके अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है, ना कि हम दास बुद्धि में या शिकार बुद्धि में आ जाएं। और आपका होमवर्क था, अपने मन को आपने देखना है क्या हम इस खेल को शक्ति के साथ खेल सकते हैं। और जो फोर्थ स्टेप ऑफ मेडिटेशन थे वो भी आपका होमवर्क था कि उसके उसका अनुभव करें। अब हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, उसकी क्लैरिटी हमको मिल गई है। और अब हम देख पाते हैं, समझ में आ गया है कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये भी समझ में आता है कि क्या हम पारस बुद्धि की लाइन में हैं। और प्रशांत भाई को धन्यवाद। और अब हम प्रशांत भाई का स्वागत करते हैं। प्रशांत भाई हेलो बोल रहे हैं सबको, गुड मॉर्निंग। हमारे लिए कितना अच्छा है कि हम उस उच्चतम चेतना से शुरुआत करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं उस भाषा का जिसमें हम शब्द यूज करते हैं अदृश्य यात्री। और ये अदृश्य यात्री बहुत भाग्यशाली है क्योंकि वो अमर है और वो किसी भी तरह के नुकसान से परे है। और यहाँ की कहानी उसको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और उसका एक अविनाशी घर है और उसकी एक बहुत महान और अविनाशी परिवार है। और उसकी कुदरती अवस्था जो है वो खुशी की है, जॉय की। और उसको इस कहानी से कुछ भी नहीं चाहिए, इस कहानी की दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। वो कभी भी ना तो वो भिखारी बनता है और ना ही वो कभी किसी का शिकार बनता है। और ये सनातन सच्य है, अदृश्य खिलाड़ी वही अदृश्य यात्री है और वही अदृश्य अभिनेता भी है। और वह अदृश्य दृष्टा भी है। हमने देखा कि वो परम भाग्यशाली है क्योंकि उसको ये एक तोहफा मिला है कि जाके वो अपने यहां पर आकर वो अपना अच्छा सा अभिनय दिखाए, और ये उसके लिए बहुत बड़ा अनुभव है और ये उसकी बहुत बड़ी उसका बहुत बड़ा पार्ट है इस कहानी में कि वो लंबे समय तक अपना अभिनय दिखाता है। और उस कहानी अपने आप में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब तक कि देखने वाले दर्शक जो हैं वो समझदार हैं कि कोई भी तोहफा कभी नुकसानदेह नहीं होता जब तक कि वो पर्सन समझदार है। पर अगर वो समझदार नहीं है तभी ये तोहफा जो है मुसीबत बनता है। हमने देखा कि ये अदृश्य यात्री जो है जब तक समझदार रहता है वो सदा के लिए खुश रह सकता है। मगर हमने ये भी देखा ये अदृश्य यात्रियों के अंदर एक बात है कि वो क्रॉस कर लेते हैं उस हरी लाइन को, अज्ञानता की रेखा को, और जब वो क्रॉस कर लेते हैं वही अज्ञानता है। वो ये भी नहीं देख पाते कि वो कौन है और कहां से आए हैं। हमने एक उदाहरण दिया था कि एक इंसान कैमल की एक्टिंग कर रहा है, वो अपने आप को कैमल ही समझने लगता है और यही तो अज्ञानता का अंधकार है। और तब उसके दुख बनते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और वो परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है बिना किसी बात के। क्यों? क्योंकि वो सत्य दुनिया से परे है। कभी जब वो इस अंधकार में आ जाता है तो वो अपने लिए और प्रॉब्लम्स पैदा करता रहता है। और वो नीचे जाने वाली कुंडलिनी में, स्पाइरल में नीचे की तरफ गिरता चला जाता है और ये उसके लिए बहुत कुदरती है। वो इसी में बिजी रहता है और यहां पर ही व्यक्तित्व और अहंकार जैसे शब्द आते हैं। और यहां पर सबकी सब कहानी में चीजें, व्यक्ति सब अस्थाई हैं। आप आई शब्द यूज कर रहे हैं ऐसी चीज के लिए जो कि आप हैं ही नहीं, और इस आई को इतनी आसानी से किसी भी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। और उसी के बेस पर आप अपनी भावनाएं भी बना लेते हैं। और तरह तरह की इमोशंस आपके अंदर आने लगती हैं। और इस समय में वो अपना जो बहुत सुंदर सत्य है अपने बारे में उसको बिल्कुल भूल जाता है। और कारण क्या है? वही अज्ञानता का अंधकार। और यहां पर ऐसी अवस्था में है सबके सब कि आपको ये नहीं पता कि आपको ये नहीं पता है। वो आप ये भी नहीं समझ पाते कि आप अंधकार में हैं। और यहां पर स्थूल वतन पर सबके सब इतना कुछ पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, सब अपने आप को एक दूसरे को डिग्रीज दे रहे हैं, मगर ये नहीं जानते कि हम नहीं जानते और उस स्पाइरल में नीचे गिरते आ रहे हैं। और यहाँ पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ मेरी संभावना के लिए नहीं, सबके लिए है। और ये भी कि हम सबके सब इस बड़े मैप को, बड़े मापचित्र को भूल चुके हैं, और उसे पहचानना ही सबसे बड़ा मील का पत्थर है। हमें यहाँ पर मुड़ना है और रिवर्स, बिल्कुल अलग तरह से, अलग डायरेक्शन में जाकर स्पाइरल में ऊपर की तरफ चढ़ना है और श्रेष्ठ बनने का कोशिश करना है। और जैसे ही हमको ये समझ में आता है तो हमारे रिएक्शंस किसी भी स्थिति परिस्थिति के लिए वो बदल जाते हैं। सिचुएशंस, परिस्थितियां आती ही रहेंगी और हमें इंतजार भी नहीं करना है इन परिस्थितियों का, मगर हम इन परिस्थितियों को हैंडल करने में सक्षम हो जाते हैं। और हमें इस समय में अपने आप को याद दिलाना है कि ये कहानी, जैसे कि प्रशांत भैया क्लास ले रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, वो भी एक कहानी है, और हमारा सत्य परिवार, सत्य संसार इस स्टोरी से कहीं पार की दुनिया में है। ये अदृश्य यात्री इस कहानी का नहीं है, इस कहानी का हिस्सा नहीं है, और उसको इस कहानी का भी पता है और अपने सत्य संसार का भी पता है, जो इस कहानी की दुनिया से बहुत परे है। आकाश के आयाम, हर मिनट, हर सेकंड जो हम इस समय पैदा करते हैं, जो हमारा ऊपर की तरफ श्रेष्ठतम अवस्था में जाने का प्रोसेस है, उसमें ये इजाफा करता चला जाता है। और यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है अपने आप को समझना है कि अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और हमें ऐसा कुछ करना है कि हम ऊपर की तरफ जाएं। किसी के कोई विचार हैं या कोई कमेंट है इस बारे में कुछ कहने के लिए तो कहें। आपका धन्यवाद है, आपने कल का सब रिमाइंड कराया, रिवीजन कर दिया। क्या अपने आप की पहचान बनाना ये बंधन का एक हिस्सा है? किसी ने ये प्रश्न पूछा है। कल हमने बात की थी उसके लिए हम बोर्ड का यूज करते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखें। यहाँ पर हमने बात की थी कि ये एक स्थूल वतन है बॉक्स में, और यहाँ पर हम बंधन बनाते हैं, आसक्ति होने लगती है, अगर मैं कुछ भी सोचती हूँ, जैसे कि कल मौसम कैसा होगा, तो इसका मतलब मैं एक्सपेक्टेशंस, आकांक्षाएं पैदा कर देती हूँ। मैं यहाँ पर अपना एक शब्द इस्तेमाल करने लगती हूँ, मेरा, मैं और मेरा, और ये कौन कर रहा है? ये सब एक गेस्ट, मेहमान, जो यहाँ पर कुछ समय के लिए आया है और उसको मालूम है कि उसको यहाँ से बाहर जाना है। आप यहाँ पर किसी के यहाँ, किसी के घर में 5 मिनट के लिए एक मेहमान बन के जाते हैं और वहां पर जाकर अपनी आकांक्षाएं और इच्छाएं पैदा कर लेते हैं, तो ये आपके अपने लिए एक मुसीबत खड़ी करना है। और आकांक्षाओं के साथ साथ वहां की चीजों को, उस घर की चीजों को आप अपना कहने लगते हैं, तो आप तो इस बंधन में पूरी तरह से जाल में फंस गए हैं। और थर्ड लेवल जो है बॉन्डेज का, बंधन का, आप माई से हटकर अब उन चीजों के लिए आई शब्द यूज करने लगते हैं। ये थर्ड स्टेप है बंधनों में बुरी तरह से फंसने का, आप उस हर चीज को अपना बना लेते हैं। व्यक्तित्व के लिए ये एक नीचे गिरने का अलग ही स्तर है। हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इन रिकॉर्डिंग्स को जो अभी तक चल रहा है उसको बार बार सुने। आपने कल बात की थी, आपने ये एक्सप्लेन किया दोबारा से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पास्ट लाइफ के बारे में बताया था और साइंस के बेस पे, क्या ऐसा क्यों है कि हम पास्ट के बारे में भूल जाते हैं और नए इम्प्रेशंस की तरफ ही ध्यान देते हैं? प्रशांत भाई कह रहे, ये सब मेमोरीज, सब यादें हमारे अंदर हैं और ये इम्प्रेशंस हमारे पास हैं, और इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि हमको उन यादों की तरफ ले जाते हैं, हमें उन्हें याद कराते हैं, मगर सब नहीं। जैसे कि कल हमने अपने दोस्त के साथ बात करी, मगर उसके बारे में इतना ज्यादा सोचता नहीं हूँ, मगर जब मेरे को कोई इस बात की याद दिलाता है तब मुझे याद आता है कि हाँ, उसने मुझे क्या बताया था और मैंने उससे क्या डिस्कस किया था। नॉर्मली हम ऐसे सोचते नहीं हैं। ऐसे ही हम पुरानी यादों की तरफ जाते नहीं हैं जब तक कि कुछ ऐसा ना हो जो हमें झटका लगाए और उनकी तरफ खींचे। हमारी इस स्थूल दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ट्रिगर करे हमारे पास्ट लाइफ के एक्शंस को और वो याद दिलाए कि पास्ट में हम कैसे थे और क्या था। और इसमें सब कुछ ही फैक्टर्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं। क्या हम माई शब्द को यूज कर सकते हैं बिना अपना कुछ इसके अराउंड व्यक्तित्व बनाए हुए? हमारी भाषा में ये शब्द बहुत आता है, मगर महत्वपूर्ण बात है कि हम उसको अनुभव ना करें, कि जैसे मैंने मेरा कहा तो उस मेरा की अनुभूति ना हो अंदर, मैं उसे उस चीज को, उस व्यक्ति को, उस स्थिति को अपना ना कहने समझने लगूं। मगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर चीज को अपना बना लेते हैं। जैसे कि मैंने ये काम किया, ये मेरा है, ये मेरा प्रोड्यूस किया हुआ है, तो उस माय की अनुभूति अंदर होना अदृश्य यात्री के अंदर ही जाल में फंसना है। मगर अदृश्य यात्री जो समझदार है वो ये सब क्रिएट नहीं करेगा, वो ये सब बातें उत्पन्न नहीं करेगा, उसका किसी भी चीज से बिलोंगिंग नहीं होगी, किसी भी चीज को अपना नहीं कहेगा, उस मैं और मेरा के जाल में फंसेगा नहीं, वो सदा इन सब से स्वतंत्र है। और आप जितने स्वतंत्र होते हैं आप उतना ही आप उस श्रेष्ठ सत्य को अनुभव कर पाते हैं। और जितना ज्यादा आप इस दुनिया में झूलते रहते हैं, ये अनुभवों से दूर रहते हैं, और यहाँ पर अपने अहंकार को बचाने के लिए सब लोग जो हैं इसको ऐसे कह के छोड़ देते कि ये तो संस्कार है। और जितना हम अहंकार को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा हम अपने आप को उस श्रेष्ठ चेतना से दूर रखते हैं। अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी लॉटरी है कि हम अगर जो ऐसी भी चीजें हैं ईगो और ये सब अटैचमेंट्स को, आसक्ति को अपने से दूर रखें, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा भाग्य है। और ये इस समय हम बहुत स्मार्ट हैं कि हम इस बात को महसूस करके इससे दूर रह सकते हैं। क्या ऐसे डीजा मोमेंट्स जो होते हैं वो पिछली जिंदगी के कुछ यादें होती हैं? प्रशांत भाई ने कहा इसके बारे में हम बात करेंगे मगर अगले सेशंस में। ऐसा नहीं है कि वो आपकी पिछले ही जन्म में हुए हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो पीछे कहीं किसी जन्म में हुए हो। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम बात करेंगे अगले सेशन में। एक और प्रश्न है कि अभी इस समय अदृश्य यात्री के लिए महत्वपूर्ण बेसिक थिंग है सुरक्षित होना। मैं सपने देखता रहता हूं कि मैं हर सिचुएशन में असुरक्षित हूं, क्या ये मेरे संस्कार है? क्या ये हैबिट की वजह से, ये संस्कार की वजह से है? प्रशांत भाई का कहना है हाँ, ईगो अहंकार जो है वो असुरक्षितपन लाता ही है, वो असुरक्षित बनाता ही है, वो आपको सिक्योरिटी कॉन्शियस बनाता है। और अवचेतन मन में सबके इस समय पर ये असुरक्षित होने की भावना है और ये सपनों में आता है, उसी तरह से ये एक्सप्रेस होता है। धन्यवाद। अभी और क्वेश्चन नहीं है तो अभी आज के विषय पर चलते हैं। आज हम एक लंबी कहानी की बात करते हैं। आज चांस मिला है तो हम एक कहानी सुनाते हैं जो एक एपिक है। ये भारत का एक पुराना एपिक है जिसका नाम है रामायण। और हम देख रहे हैं इस कहानी के पीछे एक आध्यात्मिक मैसेज है। जो इस रामायण को जानते हैं कि ये कैसे एक साइको ड्रामा है और ये एक ड्रामा एक तरह से एक इंसान के आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है और कितना रियल लगता है। यहाँ पर ईगो की भी बात है, अटैचमेंट्स की भी बात है, यहाँ पर हर तरह की फीलिंग्स और इमोशंस हैं इस रामायण में। और हम इसको एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में कुछ चरित्र हैं, उसमें से एक चरित्र जिसका नाम की सीता है, जो एक राजकुमारी है और फिर रानी बनती है। वो बहुत नोबल है, महान है, बहुत सुंदर है, बहुत खुश है, उसके लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और असल में सीता शब्द यूज किया गया है आत्मा के लिए। और सीता की शादी हुई है राम से और राम एक राजा है। वो एक परफेक्ट राजा है, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं। उसके बारे में अगर बात करें तो वो हर तरह से परफेक्ट है और सारी की सारी दुनिया उसको सारा संसार उसको प्यार करता है। और शॉर्ट में कहें तो परफेक्ट एक परफेक्ट किंग है। तो मतलब ये राम जो है वो हमारा भगवान है। परफेक्ट किंग इज आवर गॉड। सीता की दुनिया में सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा है। राम एक परफेक्ट है। यहां पर दुख का तो कोई संभावना ही नहीं है। मगर यहाँ पर एक थर्ड कैरेक्टर है, उसका नाम है रावण। और ये रावण जो है वो डीमंस दुष्टों का राजा है। राम जो है वो खुशी को दर्शाते हैं और रावण दुख देता है और दुख लेता है। उसके पास बहुत तरीके हैं सारों, देने के भी, दुख देने के भी और दुख लेने के भी। और यही उसका संस्कार है। और वो सीता को ही दुख देता है और वो चाहता है कि वो सीता को किडनैप कर ले। वो कर भी नहीं सकता। क्योंकि वो एक डॉटेड लाइन, जिसे कि लक्ष्मण रेखा कहा गया है, सीता इस रेखा अज्ञानता की रेखा से दूर है। जब तक सीता इस लाइन से बाहर नहीं आती तब तक रावण कुछ नहीं कर सकता। किसी ने कहा लाइन ऑफ इग्नोरेंस अज्ञानता की रेखा। रावण ऐसा किंग है जो कि अज्ञानता में है। अज्ञानता में होते हुए ये भी एक बात याद रखता है और वो उस बात में बहुत होशियार है। किसी ने कहा कि धोखे में, माया में रावण होशियार है इस बात में कि वो दूसरों को अज्ञानता में ले जाए। अब वो चाहता है कि वो सीता को इससे लाइन से बाहर ले आए और अपनी तरफ ले आए। तो वो तरह तरह के बहुत सारे मैनेजमेंट प्रोग्राम और जाने क्या क्या करता है सीता को बाहर लाने के लिए। और इस समय पर वो एक सुनहरी हिरन भेजता है सीता के सामने। ये हिरन जो है सुनहरी हिरन वो अज्ञानता की रेखा से बाहर है, इस डॉटेड लाइन से बाहर। एक ही बार केवल सीता को इस रेखा के बाहर आना होगा हिरण को लेने के लिए। और यही है कहानी में, एक बार वो इस लाइन को क्रॉस कर लेती है। जैसे ही वो इस अज्ञानता की रेखा के बाहर आती है तो वो अंधकार में खो जाती है, अज्ञानता के अंधकार में खो जाती है। और ये बहुत मुश्किल है कि इस अंधकार से वापस रोशनी में आए जाएं। और जैसे ही वो इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करती है वैसे ही वो सब कुछ भूल जाती है। और ये अज्ञानता उसको और गहने गहन अंधकार में लेती चली जाती है। और जैसे ही वो अज्ञानता में आती है, वो रावण के राज्य में आ जाती है और वो उसकी दासी बन जाती है। वो एक रानी थी, वो राम के साथ थी, खुशी के संसार में थी, और अब वो रावण की दो दासी बन जाती है। ये उसकी फर्स्ट पोस्टिंग है रावण के राज्य में। और रावण ऐसे छोटा मोटा कोई बदमाश नहीं है, उसके पास 10 सिर हैं। इसके पास 10 सिर हैं और उसके 10 के 10 सिर जो हैं कुछ ना कुछ नया नया मांगते रहते हैं। और ये सारे के सारे सर जो हैं कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं उससे। और रानी सॉरी सीता भाग भाग के उसकी सारी की सारी डिमांड्स को पूरा करती रहती है। जैसे कि रावण के एक सर ने मांगी सिगरेट, तो वो दौड़ कर जाती है और उसके लिए सिगरेट लेके आती है। और जैसे ही वो एक के बाद एक उसकी सब इच्छाएं पूरा करती चली जाती है, रावण कहते कि बहुत अच्छी दासी है ये। क्या यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, प्रशांत भाई पूछ रहे, या ये सीता की कहा प्रॉब्लम खत्म हो गई स्लेव बन जाने से? अब आगे क्या होगा, कोई बताएंगे? किसी ने कहा नहीं ये एंड नहीं है, उसको और चाहिए रहेगा, वो अपनी डिमांड्स देता ही रहेगा ये रावण। किसी ने कहा मोर प्रॉब्लम्स, तो प्रशांत भाई का कौन सी प्रॉब्लम है? उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी रावण की, और वो और मांगता चला जाएगा। ये जो रावण के सर है उसकी जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती जाती है और बढ़ती चली जाती हैं, उसको नॉरिशमेंट मिलती चली जाती है और वो और बड़े होते चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुष्ट है, दुष्ट। जैसे कि आपके पास एक शेर का चीते का बच्चा हो, तब तक आपका वो दोस्त है। जैसे ही आप उसको खाना देते रहते हैं, उसको अच्छी अच्छी डाइट देते रहते हैं, तो वो बड़ा होता चला जाता है, तब वो आपको भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर एक डीमन है रावण, जिसकी की इच्छाएं पूरी होती चली गई, तो वो और शक्तिशाली होता चला गया और उसके हर सर को कुछ ना कुछ चाहिए। और अभी उसका दूसरा सिर कुछ मांगता है। किसी ने कहा कि दूसरा सर चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं, कोई तीसरा सर कहता है मैं इंचार्ज बनना चाहता हूँ, कोई राजा बनना चाहता हूँ। तो प्रशांत भाई कह रहे हैं कि ये सर हैं क्या? किसी ने कहा ये विकार हैं। किसी को मनी चाहिए, किसी को पावर चाहिए, तो हर सर कुछ ना कुछ डिमांड करता ही रहता है। इच्छाएं उसकी बढ़ती ही चली जाती हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि यहां हर सर की अपनी एक आई है, और ये डिफरेंट आईज जो हैं वो उसका एक व्यक्तित्व है। अलग अलग सर जो है उसकी अपनी एक आई है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, और वो कोई ना किसी को कुछ चाहिए, कोई फेमस होना चाहता है, कोई बड़ा सर चाहता है, कोई राजा बनना चाहता है, किसी को सिगरेट चाहिए, किसी को अपने प्रोफेशन से बड़ा करना है, और एक बहुत लोनली सा सर है, और कोई ऐसा है कि उसको केक खाना है। और कोई सर अल्कोहल मांग रहा है, और प्रशांत भाई कह रहे हैं ये जो 10 सर हैं इस समय पर हम मनुष्य आत्माओं में हो सकते हैं, किसी किसी के अंदर ये 10 के 10 सिर मौजूद हैं। आज से कई साल पहले की बात है, जब ये कहानी लिखी गई तब उस समय पर सर के रावण के केवल 10 सर थे, मगर अभी आज की दुनिया में 10 सर से भी ज्यादा सर हैं हमारे अंदर। तो यहाँ पर सीता के लिए बहुत बड़ी परिस्थिति इकट्ठी हो गई है कि कहाँ तो वो एक रानी थी, और अब यहाँ पर वो भूल गई है और वो इस दुष्ट की दासी बन गई है। और जैसे जैसे वो इस दुष्ट को संतुष्टता देने की कोशिश करती है, वो उतना स्ट्रांग होता चला जा रहा है, मजबूत होता चला जा रहा है। और यहाँ पर सीता को सिर्फ कुछ शांति चाहिए, इसीलिए वो उसको जो वो मांगता है देती रहती है, मगर यहाँ तो ये दुष्ट और ही बड़ा होता चला जा रहा है। और ये बड़ा होता हुआ दुष्ट बहुत 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 प्रॉब्लमेटिक दुष्ट बन गया है। भिखारी चेतना और शिकारी चेतना बढ़ती चली जा रही है। हमने कल देखा कि हर व्यक्तित्व जो है उसके पीछे या तो शिकारी चेतना है या भिखारी चेतना है या दासी चेतना, और यहां हम देख रहे हैं इसके पीछे भी ईगो है। जैसे कि गांधी जी कहते थे कि ये बैंडिट जो लुटेरे हैं कहीं से आते नहीं हैं, उनको हम खुद ही पैदा करते हैं। और यहाँ इस सोसाइटी में ये कहीं आकाश से नहीं टपके हैं, ये विकार इनको हमने खुद पैदा किया है और खुद ही इनको नॉरिशमेंट दे रहे हैं। और ये है इस समय सीता की खुद की अवस्था। किसी ने कहा कि रावण इस समय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, मगर ऐसा नहीं है, रावण पूरी तरह से इन्वॉल्व है इसमें। अब राम सीता को एक मैसेज देते हैं कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूं, और राम सीता को प्यार करता है, जो कुछ भी हुआ उसने जो भी गलती करी फिर भी वो उसको प्यार करता है और वो उसको हेल्प कर सकता है। और इस लाइन के पार एक दिव्य दुनिया है जहां वो उसे ले जाना चाहता है। तो ये सब बातें वो सीता को बताता है कि मैं तुमको इस सब बॉन्डेज से, बंधन से मुक्त कर सकता हूं, मगर इसकी एक कंडीशन है। हाँ, जैसा कि हमने देखा राम सीता को प्यार करता है, मदद करना चाहता है, मगर एक कंडीशन है। क्या कोई बताएगा ये कंडीशन क्या है? कोई बताएंगे? किसी ने कहा कि रावण से कोई वास्ता ना रखे। फर्स्ट स्टेप है इसकी, राम को अलाउ कर दे कि वो हेल्प कर सके सीता की। किसी ने कहा लाइन से बाहर आए, किसी ने कहा पवित्र बने, किसी ने कहा कि लेट गो करे। या ये जो दासी मानसिकता है उसको छोड़ दे और हमेशा राम को ही याद करे, और ये चूज करे कि इग्नोरेंस से बाहर आना है। प्रशांत भाई कह रहे बहुत अच्छा, यहाँ ये जो कंडीशन है उसको मैं बताता हूँ कि सीता निर्णय करे कि उसको इस अज्ञानता से बाहर आना है, कि वो स्वतंत्र होना चाहती है। ये पहला स्टेप सीता को लेना होगा। जैसे कि किसी को ट्यूमर हो जाए यहाँ पर स्थूल दुनिया में, और डॉक्टर कहता है कि मैं ऑपरेशन करके रिमूव कर सकता है, तो आपको एक कॉन्सेंस फॉर्म साइन करना होता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर कोई कह दे कि मैं नहीं चाहता हूँ ये ऑपरेशन, तो डॉक्टर या सर्जन उसका ऑपरेशन नहीं कर सकता। ऐसे ही वहां, जैसे वहां पेशेंट को डिसीजन लेना होता है, तो यहाँ सीता को ये डिसीजन खुद लेना है, क्या वो रावण से स्वतंत्र होना चाहती है। ये आपकी चॉइस है, आप चाहती हैं इससे बाहर आने का। प्रशांत भाई पूछ कह रहे हैं क्या ये डिसीजन, ये निर्णय करना आसान है, क्या वो रावण से बाहर जाती और बिहाइंड द लाइन जा सकती है। ये सब उसकी अपनी चॉइस है। क्या ये डिफिकल्ट है डिसीजन या इजी है? जैसा कि हमने पहले कहा कि ये एक साइकोड्रामा है, ये हम सबके दिमाग में चल रहा है, ये वो ड्रामा है, हम सबके दिमाग में चल रहा है। और राम सीता रावण तीनों है यहाँ, वहां गोल्डन डियर, वो सुनहरी हिरन भी है। हम सबकी जिंदगी में ऐसा समय आता है गोल्डन डियर जैसा, और अब इस समय पर हमारी शहर की सब सीताओं को ये डिसीजन लेना है। किसी ने कहा बहुत मेहनत, बहुत साहस करना होगा इसके लिए। किसी ने कहा कि नहीं, ये डिसीजन इजी नहीं है, हम तो जाल में फंसे हैं। किसी ने कहा हम राम को प्यार करते हैं तो हम कर सकते हैं, आसान भी है अगर आप सारे फैक्टर्स को जानते हो। तो राम की कंडीशन के आप निर्णय लो, और उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, तभी राम हेल्प करेंगे। और यहाँ ये है कि अगर आप एक स्टेप लेते हैं तो राम 100 स्टेप लेते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आप अपनी दिशा बदल दें, अगर आप स्टेप ही नहीं लेते हैं तो राम कैसे स्टेप लेंगे, ये लॉ है। ये आप किसी और को भी बता सकते हैं, और वो कोई आपको हेल्प के लिए कहता है मगर अपने आप को ये स्टेप नहीं ले रहा है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि अगर वो हेल्प चाहता है तो उसको एक स्टेप तो लेना होगा, तभी तो आप हेल्प कर पाएंगे। तो ये आप सबको बता सकते हैं। अब चॉइस क्या है? अब सीता के पास चॉइस, एक चॉइस ये है कि वो क्वीन बन जाए राम की, या रावण की स्लेव। ये कितना क्लियर है हमारे सामने। हम आगे चले, इससे पहले हम बताते हैं कि रावण की एक असिस्टेंट है जिसका नाम है माया, जो उसका पूरा का पूरा कारोबार देखती है। माया इतनी बुद्धिमान है कि वो रावण के सारे काम संभालती है। तो ये रावण जो है माया को ये एक जॉब देता है कि वो ये ध्यान रखे कि सीता ये निर्णय लेने का कदम ना उठाए, क्योंकि अगर सीता ये डिसीजन ले लेती है तब वो उसकी दासी नहीं रहती है, तो रावण एक दास खो देगा। माया इसके सब डिपार्टमेंट्स की इंचार्ज है। अब माया सीता के पास जाती है और एक दोस्त बन के जाती है, और सीता को वो इतनी पसंद आती है कि वो उसको अपना मेन एडवाइजर बना लेती है। और सीता अब कोई भी निर्णय लेती है वो माया के साथ इसके बारे में डिस्कस करती है। तो माया को क्या मैसेज मिलता है कि माया जो है अपने आप को बहुत समझदार, एफिशिएंट समझने लगती है, और वो उसको हर बात में कि क्या करना है क्या नहीं करना है सीता को बताने लगती है। अब सीता कहती है कि मैं अच्छे से सांस नहीं ले पाती, सिगरेट की स्मेल अच्छी नहीं लगती, और ये महंगी होती चल रही हैं, जा रही हैं, तो इसलिए मैं इनको पीना बंद कर देती हूँ। माया कहती है हाँ बहुत अच्छा डिसीजन है, पर मगर इतनी जल्दी क्या है? वो कहती है अभी थोड़े दिन रहने दो, अगले महीने से शुरू करेंगे। तो माया का पहला टेक्टिक होता है सीता को बताना कि ये बाद में करेंगे, लेटर। और फिर ये भी कहती है कि तुम तो वीक हो, तुम कमजोर हो, क्यों इतनी मेहनत करती हो इसको छोड़ने की, कि अपना टाइम मत वेस्ट करो, टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी टाइम पे उसको कहते कि ये तो वेरी डिफिकल्ट टू क्विट स्मोकिंग, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और वो नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं देखो चर्चिल भी स्मोकिंग करता था, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है छोड़ने की? किसी और समय पर माया कहती है कि थोड़ा थोड़ा लेना भी अच्छा है। वो तो वो कहती है कि परफेक्ट मॉडरेशन में अगर आप लेते हो सिगरेट, क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में इन शब्दों को देखा है, समझा है, इनका अनुभव किया है कि ऐसा होता है? किसी और टाइम पे वो ये कहती है कि ये तो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए छोड़ो, अब धीरे धीरे ही तो इम्प्रूव होगा, तो इसलिए जल्दी मत करो। माया जो है बहुत तरह के एक्सक्यूजेस बहाने बनाती है, और वही एक्सक्यूजेस जो है वो उसको देती है। प्रशांत भाई कह रहे हैं एक इंसान से मैंने सुना, जैसे कि हम उदाहरण ले रहे हैं सिगरेट का, अगर वो तो ये जो कि अगर हम इंसानों के लिए सिगरेट अच्छी नहीं तो बैक्टीरिया के लिए भी अच्छी नहीं होगी, तो ये जब मैं पीता हूं तो अंदर के जो बैक्टीरिया है वो भी खत्म हो जाएंगे। और कोई ऐसा भी होगा कि उसके माया के मन में माया किसी न किसी बहाने से डाउट क्रिएट करे, शक पैदा करे कि अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, अगर ये ना करूं तो क्या होगा, ये इफ और बट उसके दिमाग में डालती है। प्रशांत भाई पूछ रहे वेस्ट में माया का क्या, किस तरह से आप उसको देखते हैं शहरों में, किसी किसी ने कहा नो टाइम, समय नहीं है। माया कहती तुम इतनी बिजी हो कि ये क्या क्या करोगी इसको छोड़कर सिगरेट को। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाता है सीता के लिए सिगरेट को छोड़ने के। ये बहुत पावरफुल टैक्टिक्स है माया की, जिनसे कि वो ये सीता को प्रभावित कर सकती है। और बहुत सारे ये कार्ड जो हैं, बहुत टैक्टिक्स जो हैं, ये इसको रावण की जीत में बहुत सहायक होते हैं जो माया इस्तेमाल करती है। और ये माया के ये ट्रिक्स हैं जिनसे कि वो आपको समझदारी की तरफ जाने से रोकते हैं। कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? किसी ने पूछा क्या माया क्या डर भी पैदा करती है? राम को विश्वास करने में भी माया रोकती है? रावण बेसिकली है क्या? अहंकार, ईगो, किसी भी तरह का दुख हो और उसमें फियर भी आ जाता है, इन सब में रावण जो है माया की मदद से सीता के अंदर डाल सकते हैं। अपने तरह तरह की टैक्टिक्स ट्रिक्स, अपनी अपने तरीके से ये माया जो है ओवर पावर करती ही है सीता को, सोल को। माया बहुत बुद्धिमान है मगर गलत तरीके से। माया जो है ईगो के लिए काम करती है। जैसे कोई बहुत समझदार है मगर वो लुटेरा बन जाए तो वो अपनी समझदारी को उसी काम के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इसी तरह से माया जो है किसी कोई इंटेलिजेंट भी है उसी की समझदारी को उसके अगेंस्ट इस्तेमाल करके उसको अज्ञानता में ही रखती है, गलत ही दिशा में ले जाती है। आपकी ताकत को यूज किया जाता है आपके ही अगेंस्ट माया से, माया के द्वारा। किसी ने पूछा माया और रावण सेम है? इस कहानी में हम माया को अलग तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि माया एक इंटेलिजेंस है, एक बुद्धि है रावण की राज्य में, और रावण जो कि एक दुष्ट है। हम सिर्फ रावण के राज्य को बताने के लिए माया शब्द यूज कर रहे हैं। क्या ये बिहाइंड द लाइन आने पर सीता जो है राम के साथ होते हुए भी सब बातें भूल जाती है? अगर वो रावण को नहीं भी नॉरिशमेंट देती है तब भी क्या वो उसी में अज्ञानता में ही रहती है? प्रशांत भाई कह रहे हैं हम इस बारे में बात करेंगे कि वो अज्ञानता की रेखा को क्रॉस करने से पहले सीता ने इस तरह की जिंदगी जी है जिसमें कि उसने अनुभव किया है कि सत्य क्या है, वो अजर अमर अविनाशी स्थिति में को महसूस किया है, वो कभी भी शिकार नहीं बनी, वो इस स्थूल वतन पर रहते हुए भी उसने संतुष्टता खुशी ये सब कुछ महसूस किया हुआ है, संपूर्णता को महसूस किया हुआ है। वहां भी सिचुएशंस आती रही जाती रही और वो रिएक्ट नहीं करती थी और उसका ईगो वाला बिहेवियर भी नहीं था, अज्ञानता में भी नहीं थी और वो पूरे आत्म सम्मान से रहती थी, आनंदमय स्थिति में थी। जैसे कि कहानी में एपिसोड्स आते हैं, दुष्ट लोग आते हैं, एनिमल्स आते हैं, मगर वो इन सब से प्रभाव मुक्त थी और एज ए रिजल्ट और वो उस समय अपने आकाश के आयाम को जानती थी और ऐसी ही जिंदगी थी जब वो अज्ञानता की रेखा से अंदर थी। हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे बाद में। किसी ने कहा कि ऐसा है कि क्या ये ड्रामा जो है बिल्कुल सही ही है। किसी ने कहा कि माया ये भी कह सकती है कि तुम कंफर्ट जोन में हो तो ट्रबल जोन में जाना ही क्यों है राम के नई ऑफर्स को देखते हुए। तो अब हम देखेंगे कि ये जो माया के टैक्टिक्स हैं, जो ये नए कार्ड उसने पैदा किए, इनसे हम कैसे बाहर जा सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि माया हमें बताती है, जैसे कहा कि ये बाद में करना। अगर आपके पास ऐसा प्रोग्राम है या आपकी आदत है और आपकी आदत है कि आप हर चीज को अभी करते हैं, नाउ, हम दो ही शब्द यूज करते हैं, नाउ और नेवर, आप या कभी नहीं। अगर आप आज करने की हैबिट में हैं, तब आप इस लेटर को के चक्कर में नहीं आएंगे, इसके जाल में नहीं फंसेंगे, लेटर का शब्द आपको जीत नहीं सकता। और यहाँ पर इसको आध्यात्मिक रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। ये एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा चल रहा है। यहाँ पर रावण भी है, उसके 10 सर भी हैं। ये 10 के 10 सिर हम सबके अंदर हैं। सीता को एक ट्रिक के थ्रू इस लाइन से बाहर निकाला जाता है। ये वो अपनी मर्जी से करती है, ये किसी की भी चॉइस के बिना नहीं होता। ये चॉइस आपके पास है, आप चुनाव कर सकते हैं। अगर मैं हाँ बोलता हूं कि मुझे ये चाहिए ये सुनहरी हिरण, तो आप ये आपकी चॉइस है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। और सीता के पास चॉइस है, अभी एक और प्रश्न नहीं है। यहां हमने देखा यहां पर रावण भी एकदम तंदुरुस्त है, माया भी तंदुरुस्त है, और यहां पर सीता और राम एक साइड पे हैं, माया और रावण दूसरी साइड पे हैं, और ये एक खेल चल रहा है। और किसी भी खेल में जीतने वाले भी होते हैं और हारने वाले भी होते हैं, और किसी भी गेम में पनिशमेंट भी मिलती है और प्राइज भी मिलते हैं।
सीता को होशियार रहना पड़ेगा, वो ही जीत सकती है, वही विजय पा सकती है रावण के ऊपर। अगर वो रावण से हार जाती है तो उसे कुछ पेनल्टीज देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या, कुछ पनिशमेंट होगा वो क्या? इस धरती पर 8 बिलियन व्यक्ति है, सब कोई अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान हमें कहता है कि जो भी कोई परिस्थिति में है वो ऐसे ही नहीं होता, हर चीज का कोई कारण होता है, हर एक के पीछे एक राज है। और तो इसका कारण क्या है? कारण वह है क्या, तुम्हारे रावण के साथ तुम्हारी कितनी हार हुई है, जो भी परिस्थिति तुम्हारी जिंदगी में आती है उसका सारा आधार रावण है। बहुत सारा दुख है आज इस दुनिया में, ये इस कारण है क्योंकि सीता ने रावण को से हार मान ली है। ये थोड़ा बहुत डर, हर तरह का पनिशमेंट होता है, हर तरह का पेनल्टी देनी पड़ती है हर बार सीता को रावण से हारने पर। जैसे तोहफे मिलते हैं, प्राइज मिलता है रावण पर जीत पाने के लिए, जैसे एक रेड कार्ड दिखाया जाता है कोई गेम में पेनल्टी पर, तो ये सबसे बुरी चीज होती है। जो प्राइज है वो गोल्ड मेडल होता है उस गेम में, लेकिन यहाँ पर प्राइस बहुत बड़ी होती है। तुम्हें एक ऐसा जन्म मिलता है जो अमूल्यवान है, तो किस तरह का जन्म मिलता है वो इतना अमूल्य है, जैसे जो सतयुग है वो तुम्हारा प्राइस बन जाता है। और जो पेनल्टीज मिलती है, सिर्फ एक रेड कार्ड नहीं मिलता जैसे गेम में होता है, लेकिन थोड़े बहुत दुख भी, थोड़े बहुत परेशानी भी। हम पैदा होते हैं कैसी जिंदगी में, जहां दुख होता है, दर्द होता है, हर एक के पीछे कारण होता है। जब हम ये बड़े मैप को देख पाते हैं कि अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि लोग इस दुख से फ्री हो जाए तो उन्हें इस गेम को जीतना होगा। और ये ऐसा एक लॉ है जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, वो रूल, कुछ रूल्स है इस ड्रामा के जिसके आधार पर ड्रामा चलता है। और जो हमारा स्कोर बनता है रावण के विरुद्ध, वो हमारी आगे की जिंदगी को डिसाइड करता है, आगे के आने वाले जन्मों को डिसाइड करता है। हम डिसाइड करते हैं कि हमारा स्कोर क्या है, हम डिसाइड करते हैं हमारे प्राइस है। क्या भगवान पनिशमेंट देता है, या कोई नेचर होता है, या जीन्स होती है जो हमें पनिशमेंट देता है? नहीं, हम खुद हैं जो डिसाइड करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और पहलू है इस गेम के, गेम में, उसे हम समझते हैं। हर गेम में कोई जीतता है, कोई हारता है। एक गेम होती है बॉक्सिंग की। मैंने बॉक्सिंग ली है, मैं दूसरे गेम की बात नहीं कर रहा जहां पे ड्रॉ होता है, मतलब दोनों के इक्वल पॉइंट्स मिलते हैं। बट बॉक्सिंग में होता क्या है, मुक्केबाजी भी, मतलब एक बॉक्सिंग के गेम में क्या क्या होता है। बॉक्सिंग में नॉकआउट होता है, नॉकआउट मतलब बस हट जाते हैं, जो हमारे ब्रेन के एक तरफ में टेम्पोरल बोन होता है, जो दूसरे बोन्स की तरह स्ट्रांग नहीं होता, और उस बोन के पीछे एक इम्पोर्टेंट आर्टरी होती है जिससे खून बहता है। बॉक्सिंग में ऐसा होता है कि वो अलाउ होता है कि उस टेम्पोरल बोन पर चोट पहुंचाई जाए, और अगर जब वो होता है, ऐसे होता है, तो वो आर्टरी स्पासम में चली जाती है और वो दूसरा व्यक्ति बेहोश हो जाता है, और ये अलाव होता है बॉक्सिंग के गेम में। इसमें किसी किसी की मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए स्कल को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बचाया जाता है। लेकिन किसी को बेहोश करने का बस यही तरीका है, नॉकआउट करने का यही तरीका है। और जब नॉकआउट होता है तो वो खिलाड़ी बेहोश हो जाता है, और जब बेहोश होता है तो उसे पता ही नहीं कि एनिमी कौन है, वो किसी को पहचानता भी नहीं है। जब खिलाड़ी बेहोश होता है, उसे पता नहीं कि वो एक खेल में है। कुछ समय के लिए जब तक वो बेहोश है, उसे पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, वो बस अपने में ही खुश है, उसे कुछ नहीं पता होता। यही है, जब वो बेहोशी की हालत में, उसे पता ही नहीं कि ये गेम चल रहा है। तो हमारा जो ये गेम है, जो इसमें अगर हमारा एक छोटा सा शहर है, और उस शहर में अगर किसी को पता ही नहीं कि वो एक गेम में है रावण के विरुद्ध, तो वो बेहोश है। इसका सीता बेहोश है, किसी को ये पता ही नहीं कि वो रानी है और वो कोई दासी के रूप में बिहेव कर रही है, इसका मतलब कि वो बेहोश है। किसी को पता ही नहीं राम के बारे में, जो उसकी मदद करना चाहता है, तो वो बेहोश है। उसके दोस्त के बारे में नहीं पता, दुश्मन के बारे में नहीं पता, किसी के बारे में नहीं पता। तो इसका उत्तर क्या है? तो अगर कोई बेहोश होता है इस ड्रामा में, तो उसका क्या अंजाम होगा? जब लक्ष्मण बेहोश हुआ था तो क्या हुआ था? रामायण में जब लक्ष्मण बेहोश हो जाता है तो क्या होता है कहानी में? लक्ष्मण कैसे उठा? हाँ, लक्ष्मण को संजीवनी सुंघाई गई थी, तभी वह जागा था। तो यही है संजीवनी। संजीवनी एक दवा है जो जगाती है हमें बेहोशी से। हम यहाँ इस रिट्रीट के लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं, तो ये रामायण में भी इसी के बारे में बताया गया है कि संजीवनी एक जड़ी बूटी है, दवाई है जो बेहोश को जगा सकती है। तो यही कारण है हमने ये शब्द यूज किया है हमारे रिट्रीट के लिए। सच्ची सच्ची संजीवनी क्या है? ये ज्ञान है। कई तरह के ज्ञान होते हैं, कई किताबें होती है, शास्त्र से कौन सा ज्ञान हम कैसे बताएं कि कौन सा ज्ञान संजीवनी है? अनेक तरह के ज्ञान हमारे सामने है, कई तरह की किताबों के रूप में, फिलोसॉफर्स की किताबों के रूप में, साइंस की किताबों के रूप में, हम कैसे जाने कि कौन सा ज्ञान संजीवनी है? अगर आप बताओगे तो प्राइज मिलेगी। किसी ने कहा आत्मा का ज्ञान, अपने दुश्मन को सही पहचान जो हमें बेहोशी से निकाल देता है, जिससे जो यहाँ मैं और मेरापन नहीं होता, वही सच्चा ज्ञान है। ये सब अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं जो हमें जगाता है, ऐसा ज्ञान। सबके आंसर सही है। अगर कोई ऐसा ज्ञान है जिससे जिससे हमें इस गेम के बारे में पता चलता है, तो वही सच्चा गेम है। हम पहचान पाए ज्ञान से उस अदृश्य रानी को जो सीता है, हम सीता को अगर देख पाए, सच्चे सच्चे रानी को, और अगर हम पहचान ले कि कौन माया है, कौन रावण है, और इसके अलग अलग रूप को पहचान पाए, तो यही सच्चा सच्चा ज्ञान है। हमने देखे रावण के अलग अलग सर, और जिससे हम अपने सच्चे दोस्त को जान पाए और उससे हम विजय पाए रावण पर, तो संजीवनी ने हम पर काम किया है। क्योंकि संजीवनी ही हमें जगा सकती है, उस बेहोशी की हालत से निकाल सकती है। जो रावण की बॉक्सिंग में, वही हमें जिता सकती है। जो ज़ॉम्बी होता है, जो बेहोशी में कुछ भी सीता कर रही है, उसे पता ही नहीं कि वो एक गेम में है, उसे पता ही नहीं कि कौन उसका दुश्मन है, और वो दुश्मन के लिए ही काम कर रही होती है। जैसे दुश्मन उसे कुछ सामान देता है और वो खुश हो जाती है, और वो सोचती है कि दुश्मन ही उसका दोस्त है। अगर संजीवनी ने उस पर काम किया है, तो उसे पता चलेगा कि उसका सच्चा सच्चा दोस्त कौन है, सच्चा सच्चा दुश्मन कौन है। और जो असुर होता है, जो रावण होता है, उसमें अंदर बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं होती है। जैसे कई लोग होते हैं जैसे रावण, हमें कभी थैंक यू नहीं बोलता, सॉरी नहीं बोलता, कभी अपनी कृतज्ञता नहीं बतलाता। तो अगर हम रावण के लिए 100 अच्छाइयां भी करें, तो रावण कभी नहीं कहेगा मैं इस पे दया करूं। रावण निर्दयी होता है, रावण का काम ही है दुख देना अंत तक। रावण का कोई काम नहीं है दुख देने के अलावा, वो आप सीता को नीचे की ओर ही ले जाता है। रावण की यही प्रोग्रामिंग है, तो इससे बड़ा दुश्मन कोई हो नहीं सकता। अगर हम देख पाए कि रावण कौन है, ये गेम कौन सा चल रहा है, राम कौन है, सीता कौन है, तो यही सच्ची सच्ची संजीवनी होगी। सीता देख पाए कि उसका दोस्त कौन है और वो कहाँ, वो रानी कैसी है। विजय तो अलग चीज है, बट ये सब देखना, होश में आना ही संजीवनी, इसका मतलब है कि संजीवनी ने आप पर काम किया है। अगर ये पहचान नहीं है तो उस ज्ञान ने अपना काम नहीं किया है। अब समय हो गया है ब्रेकआउट रूम्स का, तो कुछ समय के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और कोई सिर्फ एक प्रश्न भी हो तो हम पूछ सकते हो आप। तो जिनके भी बुरे रोल है इस जिंदगी में, तो जैसे हमें लगता है कि वो ही उसका कारण है, तो कभी हमें लगता है कि वो ही बुराई कर रहे हैं, तो क्या सचमुच में उनका कोई दोष नहीं है? हम जो स्टोरी जिसकी बात कर रहे हैं, हम अपने आप से कैसे बातें करें? हमारे अंदर एक साइको ड्रामा चल रहा है, एक सोसाइटी हमारे से कुछ कहती है, लोग कुछ कहते हैं, बट हमारे अंदर क्या चल रहा है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम ये देख पाए कि वहां एक ईगो है, रावण है, और उस गेम को समझ पाए, तो हम देखेंगे कि कैसे जीत पाए जा सकते हैं। ये ज्ञान हमें मदद करता है जीतने के लिए। संजीवनी से होश में आना भी एक बहुत बड़ी चीज है किसी के लिए भी। हम विजय को बाद में देखेंगे। गेम में हम क्या क्या देखते हैं, अपने अंदर क्या क्या हो रहा है। सीता को क्या चाहिए कि वो रावण पर विजय पाए, ये प्रश्न होंगे ब्रेकआउट रूम के लिए। तो रूम में प्रश्न भी चैट में डाल दिया गया है। पॉज क्रिएट करते हैं, वे साइलेंस में जाएंगे। ये एक प्रश्न पूछा गया है कि आप संजीवनी में पहली बार पार्ट ले रहे हैं या नहीं। यस या नो में अपना उत्तर दीजिए। यस दबाइए या नो, अगर आप संजीवनी में पहली बार भाग ले रहे हैं तो यस दबाइए, वरना नो दबाइए। ये एक पोल दिया जा रहा है। रिजल्ट ऐसा है कि अराउंड 59% जो पार्टिसिपेंट्स है वो पहली बार संजीवनी में भाग ले रहे हैं, और 41% पहली बार नहीं भाग ले रहे हैं। एक और प्रश्न है, हैव यू अटेंडेड अदर इवेंट्स बाय इनर स्पेस और ब्रह्मा कुमारीज? क्या आपने कोई इवेंट अटेंड किया है इनर स्पेस या ब्रह्मा कुमारीज का? तो पहला चॉइस है, ये मेरा फर्स्ट इवेंट है। दूसरा, नहीं, मैं पहले भी संपर्क में आया हूँ। तीसरा है, मैं रेगुलर मॉर्निंग मुरली स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड चॉइस से दबाएं। आपका पहला इवेंट है, आप पहले इस ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आए हैं, और तीसरा है कि मैं रेगुलर मॉर्निंग मुरली स्टूडेंट है। और गीता जो फिनिश ग्रुप में है ट्रांसलेटर के रूप में, वो बहन हमें इस साइकोड्रामा के ऊपर कोई पॉइंट शेयर करेंगे। तो गीता बहन शेयर करेंगे हमसे। सर और प्रशांत भाई को बहुत बहुत थैंक्स। इतने इम्पोर्टेंट और इसको बहुत ही अच्छे रूप से आपने प्रस्तुत किया है संजीवनी रिट्रीट को। और जिस ब्रेकआउट रूम में मैं थी, कि सब कुछ बहुत क्लियर हो जाता है संजीवनी से। बहुत मुश्किल सी चीज है जो ये कहानी है, राम सीता रावण की। हम ये देख ईगो को देख पाते हैं, नहीं तो ईगो को देख पाना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत आसान दूसरों में देखना होता है, बट अपने आप में देखना नहीं इतना आसान। तो ये कहानी थी, ये बहुत मददगार रहेगी, जो हमारी सोच को एक्टिवेट कर देती है, और कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। ये हमारी सोच को बाहर ले आता है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। मुझे ये अच्छा लगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट डिसीशन है, कि इस ड्रामा में विजय पाना, इस जिंदगी में विजय पाने के लिए, कि हमें कैसे अपनी राइट चॉइसेस लेनी पड़ेगी। ये राम सीता की स्टोरी से बहुत मदद मिली है मुझे। हमें रुकना होगा और देखना होगा, अपनी लाइफ को एग्जामिन करना होगा, और ये मजेदार भी है। ये जो कहानी मजेदार भी है, सिर्फ सीरियस सीरियस नहीं है। ये सब कुछ कैसे एक गेम है। अगर हमें इस गेम में अच्छा खेल खेलना है, तो हमें इसको एंजॉय करना होगा, इस कहानी के साथ समय बिताना होगा, और अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि हम अच्छे खिलाड़ी बन जाएं। और हर कोई अच्छे खिलाड़ी ही बनना चाहते हैं ना, हर कोई जीतना चाहते हैं। सबको जानना होगा, अपने दुश्मन को अच्छे से जानना होगा, समझना होगा। जैसे फुटबॉल में प्लेयर्स होते हैं, वो अच्छी तरह से अपने गेम के बारे में जानते हैं, और दुश्मन कौन है उसे भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह हमारे साथ सुप्रीम सोल है, वो परम आत्मा हमारे साथ है। तो ये खेल बहुत ही मजेदार हो जाता है। सबका फिर से स्वागत है। तो जब हमें ये गेम के बारे में पता होता है तो कि ये हम जीत सकते हैं, ये हमारे अंदर एक आश जाग जाती है, हमें पता है कि क्या बीमारी है। तो आत्मा के अंदर क्या बीमारी है, क्या रावण है, क्या हमें पहचान मिलती है अपने दुश्मन की, तो हमें परिस्थितियों को मैनेज करने में बहुत मदद मिलती है, सहन शक्ति आती है। अब हम आगे सुनेंगे प्रशांत भाई से, जैसे सीता इस रावण के विरुद्ध कैसे अपनी लड़ाई लड़ती है, इससे हमें शक्ति मिलती है। इस ज्ञान से अंदर जो मन के अंदर द्वंद्व चल रहा है इसको समझने में बहुत आसानी होती है, ताकि हम सबसे अच्छे से अच्छे खिलाड़ी बन सके। कोई भी चैट में लिख सकते हैं जो उन्हें अच्छा लगा अपने अपने ब्रेकआउट रूम्स में। सबका फिर से स्वागत है। हम कुछ और मिनट ध्यान में लगाएंगे। ये एक रीसेट बटन के समान है। सबसे उच्चतम चेतना में आना कितना आसान है और हम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जिंदगी उस अदृश्य खिलाड़ी की, जो अदृश्य खिलाड़ी है वो इस खेल को अलग रूप में देखता है। वो लाइन के उस पार से देख रहा है, फ्रॉम बियॉन्ड। वो कहानी को कहानी के रूप में देख रहा है। प्रशांत यहाँ बोल रहा है, बट वो कहानी में बोल रहा है। वो एकदम आजाद है। स्टोरी के कोई मायने नहीं है, स्टोर का कोई फोर्स नहीं है उस पर। स्टोरी में कुछ सोचने लायक नहीं है, कंप्लेन करने लायक नहीं है, जो अदृश्य खिलाड़ी है वो अपनी सच्ची दुनिया के बारे में, सच्ची दुनिया में रहना चाहता है। वो ऐसी दुनिया जहाँ उसका परिवार सच्चा सच्चा परिवार है, जहाँ अमरत्व की दुनिया है। ऐसी दुनिया जो कोई इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जहाँ रावण नहीं होता। क्योंकि रावण रहता ही कहानी में है। ये उच्चतम चेतना बहुत ही एक आनंदमयी स्थिति है। यहाँ हर कोई महान है, हर कोई दिव्य है। हमने क्या किया है, पारस का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम इसको देख पा रहे हैं। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सच है। ये जिंदगी है उस अदृश्य यात्री की। ये कोई मेडिटेशन भी नहीं है, उसका सच है ये, जिसको वो जीता है। की जिंदगी है, उसका घर है, परिवार है। और जब भी हम इस कहानी की दुनिया में आएंगे, ड्रामा में आएंगे, तो बस उसे अपना सच की याद रहेगी। अपने सच्चे अस्तित्व की पहचान बनी रहेगी। वो हर इस खेल को अपनी उच्चतम चेतना में स्थित होकर देख रहा है, अपनी असलियत को जानता है ये अदृश्य खिलाड़ी। मैं बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। हमने बात की थी उस खेल की, हमने देखा सीता होश में आ गई है, सीता को गेम के बारे में पता चल गया है। अब आगे क्या है, हर एक के आगे क्या है? अब सीता रावण के विरुद्ध कैसे जीतेगी? एक राम है, एक सीता है, तो सीता कैसे जीतेगी रावण के विरुद्ध? रावण और माया का खेल चल रहा है एक तरफ, और एक लाइन बनाई है हरे रंग की। यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? जो जगी हुई सीता है, सीता जैसे बॉक्सिंग में बेहोश हो जाते हैं, वैसे वो भी ड्रामा में बेहोश थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जीत जाए? हमेशा ही वो रावण से हार खाती रही है, रावण हमेशा जीतता रहा है, तो अब सीता कैसे जीतेगी? गेम तभी बदल सकता है जब सीता की समझ बदलते हैं। ये संजीवनी से ही होता है। सीता ये समझती है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, रावण उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो अमर है। ये सीता के लिए, क्योंकि उसके अंदर डर होता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है, कोई डरते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, और जो दुश्मन होता है वो उस पर कुछ भी कर सकता है। इसी तरह सीता ने ये जो डर पैदा किए, अनेक फीलिंग्स ऐसी पैदा की रावण के कारण। सीता के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है जानना? सीता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जानना? कि वो एक रानी है और राम उसकी तरफ है, कि वो अमर है। ये सब आंसर्स आ रहे हैं चैट में, कि वो इस दुनिया की नहीं है। ये सब सही है, लेकिन ये जानना कि रावण को जीवित रखने के लिए कुछ इसको सप्लाई करना पड़ता है, कुछ इसको देना पड़ता है, और सीता ही वो है जो रावण को कुछ सामान लाके दे रही है, फ्यूल या खाना लाके दे रही है। जब कोई दुश्मन होता है, उसको हराना होता है, तो सबसे पहले उसका खाना बंद करना होता है। किसी को देश के हराना भी आसान तब हो जाता है जब उसका खाना पीना बंद कर दिया जाए, उसकी सप्लाई बंद कर दी जाए। तो यही सीता को समझना हो कि रावण जीवित थी उसकी सप्लाई के कारण है। इसी तरह रावण आपके साथ एक युद्ध लड़ रहा है, और सीता को समझ आ रहा है सीता ही वो है जो रावण को सप्लाई कर रही है, और वो सप्लाई को रोक सकते हैं, यही उसकी जीत समाई हुई है। अगर सीता ने कहा कि मैं रावण को अब सप्लाई नहीं करने वाली, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कोई भी युद्ध में, कि सप्लाई जो रावण को चाहिए वो उसे मत दो। हाँ, रावण इसके विरुद्ध करेगा, रावण रावण तड़पेगा, रावण के नाक से धुआं निकल सकता है, लेकिन रावण सीता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सीता इतनी पावरफुल पोजीशन में होती है। और अगर सीता ऐसे ही करती रहेगी तो रावण छोटा होता जाएगा। रावण कहेगा सिगरेट चाहिए, तो सीता को चाहिए कि वो सिगरेट उसे न दे। अगले दिन भी मत दो सिगरेट, तीसरे दिन भी मत दो, रावण छोटा होता जाएगा। तो ये रावण छोटा होता जाएगा। रावण सूक्ष्म है, संकल्प भी सूक्ष्म है। मैं सिगरेट मैं पिछले सिगरेट के बारे में, पिछले संकल्पों के बारे में सोच रहा हूं। अगर सिर्फ हमें ऊपर से नहीं रोकना है, संकल्पों को भी रोकना है। तो 3 दिन में रावण समाप्त हो सकता है। तो संकल्प कोई भी रावण का सर है, उसको खत्म कर सकते हैं उसके बारे में सोचना बंद करके, और वो रावण का सर बेहोश हो जाएगा सिर्फ 3 दिनों में। इसकी गारंटी है, जो न्यू ईयर पे प्रशांत भाई गारंटी दे रहे हैं कि 3 दिन तक कोई भी रावण के सर को हम खत्म कर सकते हैं सिर्फ उसकी सप्लाई रोककर। कहना आसान है कि संकल्प नहीं आए, अगर मन को बिजी रखना है राम के संकल्पों में, आत्मा अभिमानी स्थिति के बारे में, इस खेल के बारे में, संजीवनी के बारे में, अलग अलग आइडियाज के बारे में जो हमने आज डिस्कस किए, तो सीता इससे सुदृढ़ होती है, स्ट्रांग होती है। उस समय रावण इस मन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मन को बिजी रखना है रावण के संग, रावण को हमें मौका नहीं देना है कि वो सीता के मन को यूज करे, बस यही काफी है रावण को हराने के लिए। रावण के सर को हम काट नहीं सकते, लेकिन उसको उसका तरीका ही है उसको खत्म करने का, कि उसकी सप्लाई ना दिया जाए, उसके बारे में सोचा ना जाए। ये एक रामबाण इलाज है, जैसे गांधी जी थे, उन्होंने नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस की थी। जो गवर्नमेंट थी उस समय, अहिंसा की प्रैक्टिस की थी। क्योंकि सिर्फ अहिंसा से ये जीत नहीं हो सकती थी, तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, क्योंकि हम सिर्फ अहिंसा का अगर यूज करेंगे तो गवर्नमेंट सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करेगी। तो नॉन कोऑपरेशन ही वो तरीका है, कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। उसको सहयोग नहीं देंगे। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, तो हम अगर अपने अंदर कोई भी रावण के सर को देखें तो उसको खत्म करने का बस यही तरीका है। हम ये नहीं कहते कि 3 दिन में खत्म हो जाएगा, बट वो बहुत छोटा हो जाएगा। ये समझ में आने लगे आए कि अंदर का रावण हमें परेशान नहीं कर सकता, उसके अंदर कुछ भी शक्ति नहीं है। एक रावण भी अगर मन में कम हो जाए तो कितनी शांति बढ़ जाती है। हर समय जब हम एक सर पर फोकस करते हैं तो हम यही होता है कि हमें रावण के सारे सर तो हटाने ही हैं, लेकिन अगर कुछ मोटे मोटे सर भी हट जाए तो बहुत मदद मिलती है। आत्मा बहुत ही शांति में रहती है और अलौकिक अनुभवों में खोई रहती है। एक और प्रश्न पहले पूछा गया था कि माया के अपने ही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। राम कहता है अभी करना है, एक मिनट बाद भी नहीं करना है, आज करना है, अभी करना है। और माया क्या कहती है कि बाद में करना है। अगर अगर हमारा दुश्मन कहता है कि तुम कमजोर है, रावण कहता है तुम कमजोर हो, तो राम कहता है तुम शक्ति संपन्न हो, तुम पावरफुल हो। शक्ति वो होती है जो शेर पे सवारी करती है। कुछ भी हो सकता है। रावण कहता है सब कुछ बहुत मुश्किल है, सब कुछ डिफिकल्ट है। राम कहता है सब कुछ बहुत आसान है, ये राज्यों का बहुत आसान है। अगर हम किसी चीज को आसान कहते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है। रावण कहता है ये रावण बहाने लेके आता है, बहुत सारे बहाने, हर कोई कार्य न करने के लिए बहाने होते हैं रावण के पास। लेकिन राम कहता है कि सोल्यूशन सोचो। जैसे आज भी आज कुछ और हो रहा होगा, कुछ न्यू ईयर पार्टी होगी, कुछ होगा, तो आप यहाँ पे छोड़ सकते थे, तो उपाय निकाला और आपने इस रिट्रीट को ज्वाइन किया, तो आपने उपाय निकाला। अगर हम उपाय ढूंढेंगे तो हमें मिलेंगे, अगर हम बहाने के ढूंढेंगे तो हमें बहाने मिल जाएंगे, बहुत सारे। कोई चीज ना करने के बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। और माया आएगी डाउट्स के साथ, शक के साथ। आज 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कुछ एक प्रश्न उठ सकता है मन में, तो उसके उसे आप कैसे डील करेंगे? हमें निश्चय का इस्तेमाल करना होगा। इन आइडियाज के बारे में हमें 100% निश्चय रखना होगा, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग होती है, माया बहुत पावरफुल होती है। हमें सिर्फ अपने जो भी हमारे मन अंदर डाउट होता है तो इनको दूर करने के लिए हमें अनेक प्रश्न रखने चाहिए। प्रश्न पूछे लेकिन निश्चय करें। प्रश्न पूछकर निश्चय को प्रश्न पूछे और निश्चय में पक्का हो जाए, नहीं तो माया बहुत पावरफुल है, वो कोई ना कोई डाउट क्रिएट करके हमें फंसा ही देगी। जब निश्चय होगा तो विजय निश्चित है, क्योंकि निश्चय बुद्धि में होगा तो विजय सीता की जरूर ही निश्चित है। माया कहेगी तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, कोई इतनी आसानी से रावण थोड़ी मर सकता है। इसे बाहर की दुनिया में कहते हैं हम अभी नहीं, मैं अगली जन्म में मेहनत करूंगा, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं ये तो 1 सेकंड का खेल है, कोई लंबा समय नहीं लगता। क्यों हम रावण के साथ जीना चाहते हैं, 1 जन्म तक, 1 दिन भी उसको क्या क्यों रखना चाहते हैं? जल्दी से खत्म करो, 1 सेकंड में खत्म करो। कल का क्या पता, क्या पता अगले जन्म के बारे में, लेकिन ये माया ही, माया का खेल है।
जागृत
हमें जागृत होने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, अगर कोई चाहेगा तो ये उसके लिए पॉसिबल है। माया अपना खेल दिखाएगी कि आपको सजाग रहना है। एक दो बार माया आई, आपने उसे हरा दिया, तो फिर माया उस रूप में कभी नहीं आ पाएगी, लेकिन उनकी पहचान जरूरी है। तो आप फिर माया को हरा सकते हो। एक और चीज कहना चाहता हूँ इस कहानी के बारे में, जैसे अनेक तोहफे हैं माया पर जीत पाने के लिए, कोई भी गेम में होता है, यहाँ पे भी बहुत बड़े पुरस्कार हैं। यह जो सतयुग है, त्रेता युग है, ये बहुत बड़े इनाम है रावण पर अभी जीत पाने के लिए। तो हम सतयुग के लिए तो गेम शुरू हो चुका है, अब हम अपना बेस्ट शॉट देंगे और सत्योगी पद पाएंगे। कुछ होमवर्क देना चाहते हैं, इसका पूरा रिवीजन करना जरूरी है, रावण को पहचानने के लिए। जिसे आप इसको सुनेंगे, समझेंगे, रावण को पहचान पाएंगे, जो साइको ड्रामा अंदर चल रहा है, जो संकल्प चल रहे हैं, उसे आप पहचान पाओगे। ये किसी और की कहानी नहीं है, ये हमारी खुद की कहानी है। हमारा एम इसमें विजय है। तो समय पूरा होने को है, तो अनाउंसमेंट सुनेंगे, तो हम कल मिलेंगे और नए साल में भी मिलेंगे, क्योंकि कल नया साल शुरू हो रहा है। ओम शांति।